मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताति महा जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विचार करने बैठे हैं। हमारा जीवन तो हम जितना अपने स्वभाव की तरफ बढ़ेंगे उतना अच्छा बनेगा, जितना हम वीतराग भाव को अपने जीवन में धारण करेंगे, राग द्वेष को जितना हम कमती करते जावेंगे और अपनी दृष्टि को निर्बल बनाकर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकेगा। आचार्य भगवंतों ने राग द्वेष योर हिंसा ऐसा लिखा है। जीवन में यदि हम अहिंसा का पालन करना चाहते हैं, अपने जीवन को अहिंसा से समन्वित करके अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भी हमारे लिए जरूरी है कि हम राग द्वेष परिणामों से बचने की कोशिश करें। सामान्य रूप से प्रचलित तो ये है कि किसी जीव को नहीं मारना, यही अहिंसा है। सो इतना ही अहिंसा का स्वरूप नहीं है। आचार्य भगवंतों ने इससे और आगे बढ़कर भावों में यदि कषाय भाव उत्पन्न होता है, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से अपनी ही हिंसा कर रहे हैं, अपने ही प्राणों का घात कर रहे हैं। अपने मन वाणी और शरीर का हमने सदुपयोग नहीं किया, उसे हमने कषायों के द्वारा और अज्ञानता के द्वारा कलुषित होने दिया, तो यह हमने अपने ही प्राणों की हिंसा करी। बाहर में जिस जीव के जितने प्राण हैं, उन सौ प्राणों की रक्षा करना हर जीव चाहता है, हम भी उन प्राणों की रक्षा में निमित्त बने। हम किसी के प्राणों का घात न करें, यह तो अहिंसा का बाह्य रूप है। अंदर में हमारे भीतर दूसरे प्राणियों के घात करने का विचार ना हो, इतना ही नहीं, हमारे भीतर राग द्वेष और कषाय के परिणाम यदि हैं, तो वह भी हिंसा ही है, उससे भी हम बचने की कोशिश करें। बहुत आसान सा तरीका है, हम अपने जीवन में करुणा भाव लाएं, संवेदनशीलता का भाव हमारे जीवन में आवे, जिससे कि हमारा राग द्वेष कमती हो और वीतराग भाव हमारे जीवन में आवे। सो वीतराग भाव आने को ही अहिंसा कहें तो कह सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने तो वीतराग धर्म को ही अहिंसा धर्म कहा और सभी ने स्वीकार किया कि अहिंसा ही परम धर्म है। सो वीतरागता ही धर्म है, जो कि हमारा स्वभाव है। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में संवेदनशीलता और करुणा भाव जितना जितना बढ़ता जाए प्राणी मात्र के प्रति, अपने जो परिचित हैं उनके प्रति तो अपना दया का भाव रहता है, उनके सुख दुख में हम भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसी संवेदनशीलता तो हमारे भीतर है। पांचों इंद्रियों और मन के विषयों के बारे में भी हम अत्यंत संवेदनशील हैं। कौन सी चीज स्वादिष्ट है खाने की, उसे हम स्वीकार करते हैं। कौन सा संगीत सुनने योग्य है, ये नहीं विचार करते। कौन सा मेरे लिए अच्छा लगता है कानों को, ऐसी संवेदनशीलता है अपनी। पांचों इंद्रियों और मन की इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष पूर्वक हम पांचों इंद्रियों और मन के प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे थोड़े और आगे बढ़ो, इतना तो कर ही लिया। प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता अपने मन में आवे और इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके हम राग द्वेष ना करें, हर्ष विषाद में ना पड़े, तो हमारे जीवन में वीतरागता आएगी, अहिंसा आएगी। वास्तव में ऐसी ही अहिंसा आचार्य भगवंतों ने श्रेष्ठ मानी है। हमें ऐसी अहिंसा प्राप्त करके अपने जीवन को वीतरागता की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के बारे में दो छोटी छोटी सी घटनाओं की कल्पना कवि ने करी है कि जब भगवान महावीर स्वामी छोटे थे तो अपनी माँ के साथ में वो घूमने गए। माँ तो बगीचे में घूमने के लिए प्रवेश कर गई और महावीर स्वामी जिनका नाम वर्धमान था बचपन में, सो बाहर ही खड़े रह गए। उन्होंने बगीचे में घास देख करके प्रवेश नहीं किया। माँ तो अंदर चली गई, उसे ध्यान आया कि वर्धमान तो कहाँ चला गया, देखा तो बाहर ही रह गया। भाग करके माँ आई और कहा कि बेटे चलो, कितनी अच्छी हरी हरी घास पर चलने में आनंद आ रहा है। सो वर्धमान ने कुछ नहीं कहा, आंखों में उनके आंसू आ गए। माँ तो मुश्किल में पड़ गई, मेरे बेटे को किसने क्या कह दिया, किसी ने मार दिया, कोई हाथ कैसे उठा सकता है मेरे बेटे के ऊपर। माँ के कुछ समझ में नहीं आया, माँ समझाने लगी कि बेटे क्या हुआ बताओ तो। वर्धमान ने कहा कि माँ, किसी ने मुझे मारा हो या पीड़ा पहुंचाई हो, ऐसा नहीं है। तुमने जो ये कहा कि घास पर चलने से बड़ा आनंद आता है, यही बात मुझे अत्यंत पीड़ादायक लगी, मुझे रोना आ गया। जब तुम घास के ऊपर जीवों को कुचलते हुए आनंद मान के चलती हो तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। देखो माँ, मेरी तो आपके घास पर चलने से मेरी सारी पीठ छिल गई। सो जो वस्त्रों को हटा करके माँ ने पीठ पर देखा तो तीन कदम जो कि माँ बगीचे में घास के ऊपर चली थी वो ज्यों के त्यों वर्धमान की पीठ पर बने हुए थे। इतनी संवेदनशीलता कि दूसरे को पीड़ा हो और हमारी आंख में आंसू आ जाए, ये तो भारत में ही संभव है। किसी विदेशी ने लिखा कि मैं तो भारत इसलिए आया था ये देखने कि दुख किसी को होता है, आंख किसी की भींगती है, ऐसा मैंने सुना था। मैं ये देखने आया कि कैसी संवेदनशीलता है, कैसी करुणा भाव है मन के भीतर प्राणी मात्र के प्रति। एक इंद्री जीव के मरने पर अपन को जरा भी तकलीफ नहीं होती। चींटी पर पैर पड़ जावे तो अपने मन में ये नहीं लगता कि मानो जैसे कि हमारे ऊपर ही किसी ने पैर रख दिया हो, ऐसा एहसास ही नहीं होता। चींटी को बचाने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता, वो तो घर गृहस्थी में मरती है, मर जान दो, ऐसा अपन अपने मन में विचार कर लेते हैं। कम से कम घर गृहस्थी में मरण में निमित्त तो हम बनते हैं, पर भाव तो अपने ऐसे रहे कि मेरी कोशिश तो ये है कि कम से कम जीवों का घात हो, मैं उन्हें बचा सकूं। इतना करुणा का भाव तो अपने जीवन में आ ही सकता। एक दिन जब त्रिशला माता श्रृंगार कर रही थी अपने कमरे में और जूड़े में फूलों का गुच्छा लगा रही थी, सो दरवाजे पर वर्धमान ने आकर के देखा और वहीं खड़े हो गए। मां ने वर्धमान से कहा कि मैं सुंदर लग रही हूं, तो वर्धमान ने कहा कि आप तो वैसे भी सुंदर हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि मैंने जो श्रृंगार किया है और जूड़े में फूल लगाया है वो जूड़े पर बहुत सुंदर लग रहा होगा। तो वर्धमान ने कहा कि मां, फूल जूड़े पर सुंदर नहीं लगता, वो तो अपनी डाली पर ही सुंदर लगता है। उसे डाली पर से अगर हटा दिया जाए तो उसे भी पीड़ा होती है और डाली तो रो पड़ती है, ये मुझे सुनाई पड़ रहा है। तुमने डाली से फूल तोड़ करके जूड़े में लगा लिया है, उसकी डाली तो बहुत रो रही, वो वृक्ष तो बहुत दुखी है। ऐसा भाव अपने भीतर आता है क्या? आना चाहिए भाई। हम अपने को भगवान महावीर स्वामी का उत्तराधिकारी मानते हैं, हम उनका उपासक मानते हैं अपने आप को, और हमारे भीतर क्या वैसी गुणवत्ता जैसी भगवान महावीर स्वामी के भीतर थी, वैसी दृष्टि नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। एक पिता का बेटा हो और अगर गड़बड़ कुछ करे तो क्या कहते कि देखो पिताजी तो इतने अच्छे थे और जी लड़का तो बिल्कुल बिगड़ गए। तो ये अपने लिए भी कोई कहेगा कि नहीं? कह सकता है। हम जिसके उत्तराधिकारी हैं कम से कम उस बात का गौरव अपने भीतर में रख करके अपने आचरण से अपना जीवन भी सुधारें और आसपास के परिवेश में संदेश दें। ये काम जैनों ने तो जितना किया सो किया, गांधी जी ने ये काम किया, उनका नाम आज भी अपन याद करते हैं। किस बात के लिए? कि जिस अहिंसा और सत्य का उपदेश भगवान महावीर स्वामी ने और उसके पहले 23 तीर्थंकरों ने दिया, उसे ही सामाजिक और राष्ट्रीय रूप में पालन करके गांधी जी ने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। जिस अहिंसा और वितरागता को व्यक्तिगत रूप से भगवान महावीर स्वामी ने अंगीकार करने के लिए, आचरण करने के लिए हमें उपदेश दिया, उसी को सामाजिक रूप से और देशव्यापी रूप से किस तरह पालन किया जाए, ये हमें गांधी जी ने बता दिया। शास्त्री जी ने उसी अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में स्वयं अंगीकार करके अत्यंत ईमानदारी से अपने पद का निर्वाह किया। दोनों जन आज अपन को याद करने के लिए उनकी जयंती है। वैसे तो जो भी मनुष्य से मनुष्य होता है वो मिथ्यात्व के साथ ही होता है, सो उसका हम स्मरण नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम तो जन्म के उपरांत उन्होंने अपने आचरण को और अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने का जो प्रयत्न किया, उस दृष्टि की निर्मलता और आचरण की प्रशंसा कर रहे हैं। जिस अहिंसा और सत्य से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे लड़ाई लड़ी, इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। कैसे अहिंसा और सत्य का आलंबन लेकर के भी बिना युद्ध के और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। भगवान महावीर स्वामी ने तो अहिंसा और सत्य को अगर कोई ठीक ठीक जीवन में अंगीकार कर ले तो वो समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, यहां तक कहा। इतना ही नहीं, अगर हम उसे समाज के रूप में और देशव्यापी उस अहिंसा का उपयोग करें तो भी हम छोटे छोटे संसार के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। ये बात गांधी जी ने सिद्ध करके दिखा दी। सात बातों को उन्होंने पाप में निमित्त माना कि इन बातों के माध्यम से पाप हो सकता है। साधन की पवित्रता रखना और स्वावलंबन जीवन जीना, ये समाज के लिए संदेश था। तीसरे नंबर पर सह अस्तित्व। अगर ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आ जाएं और हम अपने साधन को पवित्र बना करके, स्वावलंबी हो करके, सह अस्तित्व की भावना मन में धारण करके अपना जीवन जिए, तो भाई हमारा जीवन तो अच्छा बनता ही है, आसपास के परिवेश में भी अच्छा बनने की ललक उत्पन्न हो जाती है, सारा परिवेश सुगंधित हो जाता है। साधन की पवित्रता का मतलब क्या है? अगर हमारा साध पैसा है तो किस माध्यम से उस साध को प्राप्त करना है, उन साधनों का विचार कर ले। पैसा तो डाकू भी कमाता है लेकिन उसके साधन की प्रशंसा कोई नहीं करता। जिन साधनों से वो पैसा अर्जित करता है, मैं भी कहीं ऐसे ही दूषित साधनों से अपने धन पैसे को अर्जित ना करूं, अन्यथा यह भी मुझे पाप की तरफ ले जाएगा। बिना परिश्रम के जो धन संपत्ति कमाई जाती है वो सब पाप की तरफ ले जाने वाली है, नंबर एक गांधी जी ने कहा। इतना ही नहीं, अगर जो सुख सुविधा के पंचेंद्री के विषय हमने जोड़ के रखे हैं उनका उपयोग विवेक पूर्वक नहीं करेंगे तो वो भी हमें पाप की तरफ ही ले जाने वाले हैं। यदि हम ज्ञान खूब हासिल कर लें और आचरण हमारा खोटा हो गए तो वो ज्ञान भी हमें हमारे पतन में कारण बन जाएगा। सो बिना चारित्र के ज्ञान का कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं है, अपने जीवन को अच्छा बनाने में वो सहयोगी नहीं है। ऐसा विचार करके ज्ञान के साथ हमारे आचरण की निर्मलता बनी रहे, दृष्टि की निर्मलता बनी रहे, इस बात का भी हमारे भीतर ध्यान होना चाहिए। नहीं तो हम संसार के पापों में लग जाएंगे, फिर हमारे जीवन में अहिंसा और सत्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा, हम अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लिखा कि यदि हम धंधा करते हैं तो बिना नीति न्याय के अगर हम धंधा करते हैं तो वो धंधा भी पाप से युक्त ही है और पाप की तरफ ले जाएगा। सो जितनी भी आजीविका के अपन साधन अपनाएं उन सब की पवित्रता नीति न्याय पूर्वक अपनाने में है। भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य षट कर्मों की शिक्षा दी, लेकिन कौन से अहिंसक कृषि इन चारों कर्मों में अहिंसा का ध्यान रखा जाए, ये भी साथ में कहा। तभी हम इन सब के द्वारा अपना कल्याण कर सकेंगी, ये हमारे कल्याण में निमित्त बनेंगी, अन्यथा ये सब बातें हमारे लिए संसार में पाप की निमित्त बन सकती। यदि हम विज्ञान का आलंबन लेते हैं बिना मानवीयता के, तो वह भी विज्ञान हमारे पतन में कारण बन जाएगा। यदि हम मानवीयता का ध्यान रख के और विज्ञान का आलंबन लेते हैं, तो वह विशिष्ट ज्ञान जो वीतराग विज्ञान है, वह हमारे कल्याण में कारण बन सकता है। भौतिक ज्ञान जिसमें अहिंसा का ध्यान नहीं रखा जाता है, मानवीयता का ध्यान नहीं रखा जाता है, वो विज्ञान हमारे उत्थान में कारण नहीं बनेगा, हमारे विकास में, हमारी प्रगति में कारण नहीं बनेगा। और यदि धर्म हम धारण करते हैं, तो जरूरी है कि त्याग भी हम करें। बिना त्याग के धर्म नहीं है, ये गांधी जी ने अपने अनुभव से इस चीज को हमें अपने जीवन में अहिंसा धारण करने के लिए अनिवार्य बताया। एक चीज और है कि जो वर्तमान में अपन राजनीति में शामिल हो जाते हैं, अगर उसका कोई सिद्धांत ना हो, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, अगर हम राजनीति में शामिल होते हैं तो हमें अपने सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए। ऐसी राजनीति जो कि सिद्धांतों से रहित है, वह भी पतन की तरफ ही हमें ले जाएगी। है तो सब बातें अच्छी, लेकिन यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो यही हमारे पतन में निमित्त बन सकती है। साधन की पवित्रता बहुत जरूरी है, ये उन्होंने अपने अनुभव से अहिंसा को पालन करने के लिए हमें उपदेश दिया, हमें बताया। और स्वावलंबन वो है कि जिसमें हमें दूसरी चीजों के पराधीन ना रहना पड़े। अपन कहते कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है, लेकिन देखें अपन तनक लाइट चली जावे तो कितने पराधीन है दिखाई नहीं रहो हैं। थोड़े थोड़े से सुख सुविधा के साधनों में कमी आ जावे तो इतनी डिपेंडेंसी हो गई है, इतनी पराधीनता हो गई कि उनके बिना अपना काम नहीं चलता। हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए कि जिससे हम अपना काम अपने हाथ से कर सकें। लोग तो ये मानते हैं कि जिसके जितने नौकर हैं सो बड़ा आदमी है, ये भैया उतना पराधीन है, अपनी बिलिया तक नहीं उठा सका कटोरी, वो को कटोरी उठावे चाहे, कपड़ा पैर में एक आदमी चाहे वो पैरे है कपड़ा, बताओ तुझे पराधीनता हुई कि बड़प्पन हुआ? नहीं भाई, ये तो हमें पतन की तरफ ही ले जाएगा। इतना स्वावलंबन हमारे भीतर हो कि दूसरे की मदद की जरूरत ना पड़े और हम तत्पर रहे दूसरे की मदद के लिए, ये स्वावलंबन है। स्वावलंबन का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि ने हमें कोई की मदद कर ले, ने हमें कोई से मदद ले ले, ये तो देश भाव हो गया भैया। प्रेम भाव तो करुणा भाव तो वो है कि मैं दूसरे से ऐसा काम ही ना करूं कि मदद लेनी पड़े और मैं दूसरे की विपत्ति में मदद के लिए तत्पर रहूं, ऐसा स्वावलंबन हमारे जीवन में आवे। शिक्षा भी ऐसी है जो हमें स्वावलंबन सिखावे। विनोबा ने तो कहा कि लर्निंग विद डूइंग, हम सीखें जो हम करें उससे, लेकिन हम ऐसे स्वावलंबन को आज पसंद नहीं करते। दूसरे की नौकरी करें ये पराधीनता हमने स्वीकार कर ली है, उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं। सबको एक ही दौड़ है कि एनी हाउ किसी भी तरफ से जॉब मिल जाए। अपने हाथ से हम पराधीन होने का उपाय करते हैं। छुट्टी चाहिए है, तकलीफ है, तो 10 दिन पहले से हाथ जोड़ो, पांव करो कि भैया दे दियो छुट्टी फलाने देना की जाने लियो। इतनी पराधीनता, लेकिन हमने उसी को श्रेष्ठ मान दिया है, जबकि आचार्य भगवंतों में ने भी लिखा कि पंचेंद्री और मन के विषयों के जो जितना पराधीन है वो अपने लिए उतना ही पतन की तरफ ले जा रहा है। जो जितना पंचेंद्री और मन के विषयों से विरक्त है, उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता, उसके जीवन उसके बिना भी चलता है, जीवन की गाड़ी रुकती नहीं है, वही व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर सकता, वही सत्य के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। और तीसरी चीज सह अस्तित्व। हम अकेले इस संसार में जीने वाले नहीं है, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री मनुष्य और त्रियंच सब हमारे साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। किसी के मरण में मैं निमित्त ना बन जाऊं, ऐसा जीवन जीऊं, मेरी वाणी ऐसी हो कि दूसरे को कष्टकारी ना हो, मेरे मन में दूसरे को कष्ट पहुंचाने का विचार ना हो। क्या इतना हम अपने भीतर में सह अस्तित्व की भावना नहीं ला सकते? लाते तो हैं, अपन उनका ख्याल रखते हैं जो कि हमारा भला करें, हमें सुख सुविधा के साधन जुटावें। ऐसा तो स्वार्थपूर्ण दूसरे का ध्यान रखने का भाव अपने भीतर है, लेकिन निस्वार्थ भाव से सब जीवों के प्रति करुणा भाव सह अस्तित्व तभी आ सकता है कि जब हम ठीक ठीक अपने जीवन को स्वयं जिए और दूसरे को जीने के लिए सुविधा दें। नौकर मेरे लिए सुविधाएं दे रहा है और मैं नौकर को पैसा तो दे रहा हूं, ऐसा मालिक सोचे तो नौकर और मालिक का संबंध सह अस्तित्व का नहीं कहलाएगा। वो तो तब होगा जब नौकर ये सोचे कि मैं, मुझे सौभाग्य है कि मैं मालिक की सेवा कर रहा हूं, और मालिक विनम्र रहे कि देखो अगर ये सेवा नहीं करता तो अकेले पैसे से मैं क्या कर लेता, मैं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि इसकी भी आजीविका ठीक से चले, सो पैसा दे रहा हूं, इसकी मेहनत का पैसा नहीं चुकाया जा सकता, परिश्रम का क्या हम किसी को पैसा चुका सकते, किसी की भावनाओं का पैसे से आकलन कर सकते? नहीं भाई, ऐसी भावना सह अस्तित्व की हमारे भीतर आवे तब तो हमारे जीवन में अहिंसा और वीतरागता आएगी, जो कि हमारा प्राप्तव्य है। आज के दिन तो विशेष रूप से हमें अहिंसा और सत्य को जीवन में धारण करने का संकल्प करना चाहिए। हम अपने खान पान में अहिंसा का ध्यान रखेंगे, पहनने उड़ने में सारे रहन सहन में जो जो साधनों का हम उपयोग करते हैं उन साधनों की पवित्रता रखेंगे और किसी जीव को क्षति ना हो, ऐसा जीवन जिएंगे। एक छोटी सी घटना है, बंगला भाषा में लिखी गई थी, उसका हिंदी हुआ डांगर बोली उसका नाम था। कहीं पर यह घटना घटी तो जिस व्यक्ति के घर में मांसाहार किया जाता था, जीवों की हिंसा की जाती थी, उसके घर की घटना। वो मांस प्राप्त करने के लिए जीवों को मारने को 2 बकरे अपने घर में लाया और पिछवाड़े उसने दोनों को बांध दिया कि 2-3 दिन में हम इनको मार करके अपने लिए इंतजाम कर लेंगे। उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पशुओं की भाषा समझ में आती थी, सो रात्रि में अचानक उसकी नींद खुली और उसे दोनों बकरे बात करते हुए मालूम पड़े। सो उसने गौर से सुना, उसमें एक बकरा बड़ा था और एक छोटा था। सो बड़ा बकरा कह रहा था कि दोनों को अपन को मारने के लिए लाए हैं, देखो तो मनुष्य हो करके भी ऐसा करते हैं, हम तो निरीह प्राणी हैं, अपनी रक्षा कैसे करें। आपस में बातचीत के दौरान वो बड़ा वाला कहता है कि देखो जब दोनों को मारेंगे तो हम तो पहले मरना पसंद करेंगे, हम अपने सामने तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। और छोटा वाला तुरंत कहता कि नहीं नहीं, मैं पहले मरूंगा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। और दोनों में आपस में इस बात का निर्णय होने लगा कि कौन पहले मरने के लिए तैयार है। दोनों कह रहे हैं कि मैं पहले मरूंगा, मैं तुमसे बाद में मरूं तो तुम्हें मरते हुए देख नहीं सकूंगा। ये बात सुन करके उस व्यक्ति को हृदय परिवर्तन हो गया कि देखो ये तो एक दूसरे की रक्षा के लिए चिंतित हैं और मैं इन दोनों के मारने का उपाय कर रहा हूं, धिक्कार है मुझे। और उस व्यक्ति ने सुबह से उठ करके पहला काम दोनों को मुक्त कर दिया और घर में कह दिया कि आज से मांसाहार नहीं बनेगा। वर्षों से परंपरा चली आ रही थी मांस खाने की, लोगों ने पूछा कि क्या तुमने अपना धर्म बदल लिया, तो उसने लोगों से कहा कि नहीं, मैंने तो सिर्फ मांस खाना छोड़ा है जो कि हिंसा का काम है, अकीदा नहीं बदला है, मैंने अपना धर्म नहीं बदला। ऐसा उसने, सच्ची घटना है भैया, अभी तो हमने कहानी सुनाई थी, एको कहानी ने समझियो। संस्मरण है किसी का, सत्य घटना है कि हां घटी, अपन इससे संदेश लेवे आज के दिन कि हम अपने खान पान रहन सहन में, खान पान में तो अपन ध्यान रखते हैं लेकिन रहन सहन में नहीं ध्यान रखते। कौन जी मर रहा हो, कैसो हो रहा हो, हमें तो चाने, लिपस्टिक लगाऊंगे तो लगाऊंगे, नील पेंट्स लगाऊंगे तो लगाऊंगे, अब चाहे जितने जी मरत हो हमें का करने, ये इसका विचार करें। हमें तो कोसा और रेशम की साड़ी पहननी है, जीवों का घात होता हो तो होवे, हमें तो सौंदर्य प्रसादन के साधन लाना है जिनमें हिंसा भी होती हो तो होती हो। हम इन सब चीजों का पहनने ओढ़ने की और अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी विचार करके ही उपयोग में लें तो कहलाएगा कि हां हमारे भीतर सह अस्तित्व का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव आया है। अहिंसा और वीतरागता के लिए यही उपाय है भैया, अपन सामाजिक रूप से इस बात का ध्यान रख सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से अपने भीतर साधन की पवित्रता, स्वावलंबन और सह अस्तित्व की भावना रख करके अपना भी कल्याण कर सकते हैं। तो अपने को प्रयास करना चाहिए कि हम जीवन ऐसा जिए जिससे कि हमारा जीवन भी अच्छा बने और आसपास के परिवेश में भी अच्छाई फैले। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो,
अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वन चारे चरते हैं,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तब शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हैं फूल झड़ियां
वो बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
तुम सादानी क्या कोई हो जग को देवी जग के निधियां
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
उदक चंदन तंबुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्ध कई
रवल मंगल गान रमाकुल जिन ग्रहे मुनि राज महम
परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज संगस्त मन श्री क्षमा सागर जी महाराज मन श्री गुरु सागर जी महाराज स्वामी ने अर्घ्य अर्पण
नित्यतम ना
मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताय जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने बोले महावीर भगवान की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग जैसा आचार्य भगवंतों ने एक श्रावक के लिए व्रतों को धारण करने का उपदेश दिया हम उसी के अनुसार उन व्रतों को धारण करने से पहले उन व्रतों के बारे में ठीक ठीक जानकारी कर रहे हैं विचार कर रहे हैं कि व्रतों को धारण करके मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाऊंगा। व्रत तो मेरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेरे राग द्वेष को घटाने और वितरागता प्राप्त करने के लिए निमित्त है। व्रत नियम यह तो सब धर्म की प्राप्ति के लिए साधन है, मैं इन साधनों को ही साधना मान लूं और व्रत नियम करके ही मैं धर्म कर लिया ऐसा अपने भीतर मानकर बैठ न जाऊं। मुझे तो इन व्रत नियमों के माध्यम से अपने राग द्वेष के परिणाम को घटाना है, उसे जीतना है। राग द्वेष घटाने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा टोडर मल जी साहब लिखते हैं। राग द्वेष घटाने के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है और राग द्वेष घटाने की क्रिया का नाम ही सम्यक ज्ञान है। सो मैं जो भी व्रत नियम आचरण कर रहा हूँ उस सब का मेरा उद्देश्य राग द्वेष घटाने का है। अपने वीतराग स्वभाव को मैं प्राप्त करूँ वही वास्तव में धर्म है, उस धर्म की प्राप्ति के लिए मैं व्रत नियम अंगीकार कर रहा हूँ। ऐसा विचार करके हम व्रत नियमों को पालन करें अंगीकार करें। सो पांच अनुव्रत तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत ऐसे 12 व्रत श्रावकों के लिए घर गृहस्थी में रह करके भी पालन करने चाहिए ऐसा उपदेश आचार्य भगवंतों ने दिया, जितना जिससे बने उतना। सो शिक्षा व्रत के द्वारा महाव्रत धारण करने वाले जीव किस तरह आचरण करते हैं, कैसे समता भाव और वितरागता हासिल करते हैं, इस बात की शिक्षा मिलती है श्रावक को। सो ऐसे शिक्षा व्रत वह भी धारण करके वितरागता के आचरण की शिक्षा लेता है। सो शिक्षा व्रत में कैसे अपन समता का अभ्यास करें, सो सुबह शाम और दोपहर में तीन संध्या कालों में हमने 48 मिनट तक कैसे पांच पापों का त्याग करके घर के बीच भी मैं हर्ष विषाद से मुक्त रहकर समता भाव धारण करूं, ऐसा अभ्यास किया। अष्टमी चतुर्दशी जो पर्व के दिन है, उन पर्व के दिनों में सारे दिन ही आरंभ सारंभ पापकारी से निवृत्त होकर के धर्मामृत का पान करूंगा, ऐसा अपन ने विचार किया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक और अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्रत है अतिथि संविभाग, जिसे आचार्य सुमंतभद्र स्वामी ने व्यापक दृष्टिकोण से बैया व्रत का। बैया व्रत का सीधा सा अर्थ है सेवा शुश्रूषा करना, लेकिन बैया व्रत तो एक अंतरंग तप है। वो बाह्य में पैर दबाने इत्यादि से पूर्ण होने वाला नहीं है, वो तो अंतरंग के परिणामों में जो वितरागता के प्रति मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग है उसका प्रतीक है। भैया व्यक्ति का अर्थ आचार्य भगवंतों ने किया कि जो वितराग मार्ग पर चल रहे हैं आचार्य उपाध्याय
साधु, उनके धर्म साधन में अगर कोई बाधा आ रही हो तो उसे दूर करके उनके धर्म साधन के अनुरूप वातावरण बनाना, यही भैया व्रत है। अकेले व्यापत्ति विपनोद पदयो संवाहनम च गुण रागा भैया व्रतम यावा अनुपग्रहो संयमी नाम। संयमी जीवों के लिए अगर उनके आचरण में कोई पालन करने में बाधा आ रही हो तो उसे दूर करना गुण रागात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यह जो रत्नत्रय की एक रूपता ही धर्म है उसके प्रति मेरा अनुराग है, उस अनुरागवश मैं उस बाधा को दूर करूं और उनके अनुकूल वातावरण बनाऊं। पैर इत्यादि दबाना तो उपलक्षण है, सामान्य व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करना, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना वह तपस्या नहीं है। जो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी सेवा अकेली नहीं, उनके माध्यम से रत्नत्रय की सेवा। मैं गुणों के प्रति अनुराग रखता हूं इसलिए सेवा कर रहा हूं, ऐसा भाव मन के भीतर आता है तब यह सेवा भैया वृत्ति भी सार्थक हो जाती, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में निमित्त बन जाती है। सो ऐसी भैया वृत्ति और ऐसी सेवा भी तीन तरह की है। दान का अर्थ आचार्य भगवंतों ने सेवा ही लिया है, चार बातों का ध्यान दान में रखना जरूरी है कि दान के समय आपके भाव कैसे सेवा के भाव हैं, वरना तो दान के समय अहंकार के भाव आ जाते हैं कि मैं तो दान देने वाला हूं। सो कहते कि दान तो सेवा के भाव से दिया जाए और देने वाला दाता दाता के सात गुणों से संपन्न हुए, और जो सामग्री दी जा रही है वह मोक्ष मार्ग के अनुकूल हो, और इतना ही नहीं जो पात्र है जिसे दी जा रही है वह मोक्ष मार्ग पर चलने वाला हो, रत्नत्रय का धारण करने वाला हो, तो ऐसा जो दान या सेवा है वह हमारे जीवन को सार्थक करेगी। दाता के सात गुण जिसमें श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, अलोलुपता, क्षमा, तुष्टि और अमात्सर्य, ये सात भाव, ये सात गुण दाता अपने भीतर धारण करता है तब उसके भीतर दान देने की योग्यता आती है। जिसे हम दान दे रहे हैं उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा है, अत्यंत रुचि है, अनुराग है, ऐसा नहीं कि भूखे हैं महाराज सो दे दो दया करके, हां भैया श्रद्धा पूर्वक ही दान की प्रक्रिया होगी। और भक्ति ये है कि महाराज हमारे यहां पर पधारे हैं, हम उन्हें अपने घर में छोड़ करके अन्यत्र कार्य के लिए कैसे चले जाएं, जब तक वो मेरे घर में हैं तब तक मैं अन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊंगा। और इतना ही नहीं,
अपने घर से जब तक वो जिनालय से आए हैं तो वहां तक मैं कमंडरू लेकर उन्हें भेज नहीं दूंगा, तब तक मैं किसी सांसारिक कार्य में नहीं लगूंगा, यही मेरी भक्ति है। ऐसा नहीं कि आप आइयो और हम दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं, हम संसार के कामों में लग जाएंगे, मेहमान को बुला करके कि आप हमारे यहां आओ, हम उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। सम्मान और आदर क्या है? थोड़ी उनके चरणों पर सिर रख देने का नाम सम्मान है? नहीं भाई, पांच पापों से उस समय निवृत्त होना ही उनका सम्मान है। मैं तो 24 घंटे सदग्रस्त हूं, सो पांच पापों में लगा रहता हूं, लेकिन आप रत्नत्रय को धारण करने वाले हमारे घर पधारे हैं, अब मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक आप मेरे यहां पर हैं, मैं पांच पापों का त्याग करता हूं, कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करूंगा, यही आपका सम्मान है। ऐसा भक्ति का भाव और विज्ञान। उम्र क्या है जो मुनि महाराज जिन्हें मैं की दान दे रहा हूं उनके योग दूं, इस बात की जानकारी हो। उन्हें सर्दी इत्यादि तो नहीं है, गर्म पित्त प्रकृति तो नहीं है, मौसम कैसा चल रहा है, इन सब का ज्ञान नहीं। हमारी चीज चल जावे, हमारी चीज चल जावे नहीं, जोन उनके रत्नत्रय में सहायक हो वह चल जावे, ऐसा भाव विज्ञान का उसके भीतर रहता है। ऐसा नहीं कि पानी के बाद रस, सब चीजें बीत रहे जाके लड़ हैं, अगर गड़बड़ चली गई तो वे फिर कहती कि हम करेंगे, हम शक्ति पहुंचाएंगे। सो ऐसा योग देंगे जिससे कि भीतर जाकर के और शांति पूर्वक वे अपना धर्म ध्यान कर सके। एक मां अपने बिना बोलने वाले बालक को जैसे कि 24 घंटे कैसा आहार इत्यादि देना, कब क्या देना, इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि बेटा तो बताता नहीं है। ऐसे ही भाव से मुनि महाराज के हाथ पर भी जैसे कि मां का हाथ हो, उस भाव से रखते हैं ग्रास कि इस मेरे एक ग्रास को मैं खाऊं तो सिवाय पांच पापों के दिन भर कुछ नहीं करूं, और इन हाथों पर मैं एक ग्रास रख दूं तो मेरा एक ग्रास ही सार्थक हो गया। ये तो वितरकता की आराधना करेंगे इस ग्रास को ग्रहण करके, इतना कीमती हो गया मेरा ग्रास। ऐसा भाव और अमात्सर्य दूसरे देने वाले दाता से ईर्षा नहीं करेंगे कि नहीं नहीं से ले रहे, हमसे नहीं ले रहे, नहीं, आप दो, मैं तो इतने में ही तृप्त हूं कि मैं देख रहा हूं मेरे यहां पर महाराज पधारे हैं, इतना ही मुझे तृप्ति के लिए कारण है, मेरा ही द्रव्य तो आप दे रहे हैं। सो देने वाले किसी दाता के प्रति ईर्ष्या का भाव, मन में करुष्टता का भाव नहीं लाएंगे। यह चौथा गुण है दाता का। और क्षमा भाव सब जीवों के प्रति, जिन क्षणों में वो दान दे रहा है उस समय आहार दान मुख्य रूप से अपन लेते हैं, पर चारों प्रकार के दान देते समय ऐसे ही सात गुण आवश्यक है होना, नहीं तो कॉम्पिटिशन, फलाने ने फलानी चीज दी, हम तो उससे बढ़िया चीज देंगे, बड़ी चीज देंगे, न हमारी नीची हो जाए, हैं? ऐसा नहीं। अमात्सरी कुछ भी देंगे लेकिन हम उनके मोक्ष मार्ग में जो सहयोगी है वही देंगे, हम कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे दूसरे से। क्षमा भाव धारण करके जो पात्र आया है उसी में संतोष रखना। चुरलग जी आए, ईलग जी आए, मुनि महाराज जी आए, आचार्य महाराज आए, मेरे लिए तो सभी पात्र श्रेष्ठ हैं, सो ऐसे श्रेष्ठ भाव से उनके लिए मैं दान दूं, संतोष रखूं, जो आए हैं उसी में मुझे संतोष है, मुझे तो रत्नत्रय की आराधना करने के लिए निमित्त है, सो इनके निमित्त से मैं अपने रत्नत्रय की आराधना करूं। इतना ही नहीं, इन्हें दान देकर के मैं इस लोक में यश की कामना नहीं करूंगा, परलोक में भी मुझे यश मिले दान देने से, ऐसी लोलुपता मेरे भीतर नहीं है। ऐसा संतोष भाव ये दाता का गुण है, और अलुब्धता देते समय उस चीज के प्रति आसक्ति जागृत ना हो। देने को तो बनाई थी, देने को तो सोचा था, लेकिन देते समय भाव आ गया कि लेते ही चले जा रहे हैं, थोड़ी बची रहती हमें तो अच्छो रहते है, ये तो आहार के लिए हो गया। ऐसे ही दान देते समय कि इतना दान देता हूं, बोलने को तो राशि बोल दी, फिर बाद में इतने सारे रुपया, हम तो एक साथ तो नहीं देंगे, हम तो आराम से, और जरूरी नहीं है कि हमें नहीं को देंगे, हम तो दूसरी जगह दे देंगे, जिस चीज के लिए बोला है उसको नहीं अन्यत्र दे देंगे हम, मुझे तो दान देना है, ऐसा नहीं। वो दाता का एक अलुब्धता का गुण नष्ट हो गया, लोह जागृत हो गया, दिए हुए दान के प्रति आसक्ति जागृत हो गई। ऐसे सात गुण दाता के हैं। पात्र के गुण तो है ही कि वह रत्नत्रय का धारी हो, अपने देश व्रत और महाव्रतों का पालन निर्दोष रूप से करता हो, और विधि क्या है, नौदा भक्ति पूर्वक मैं आहार दान देऊं, अत्यंत श्रद्धा से इन सब बातों का दान देते समय ध्यान रखा जाता। अकेले आहार दान ही नहीं, अगर शास्त्र भी भेंट किया है तो भी विधि का ध्यान रखूंगा। ऐसा नहीं कि हमारा नाम लिख लो, हम शास्त्र भेंट करो चाहत मंच पे कमरा में कर लियो, वो तो को देख लियो, तो कब हो तुम्हारा दान देवी को, मतलब आपके अंदर यश की ख्याति की आकांक्षा है कि नहीं, कि दान देने की आकांक्षा है। ये अक्सर हो जाता है अपन लोगों से, सो ऐसे भावों से तो दान का फल अपने को जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तीन तरह का दान या सेवा कही गई, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जो देते समय या देने के उपरांत संक्लेश का कारण बने वो सब दान तामसिक दान है, और देते समय या देने के उपरांत जिसके माध्यम से हम अहंकार कर ले हुए वो सब राजसिक दान है। सात्विक दान तो वो है कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे लोभ का क्षय हुआ, मेरे भीतर त्याग करने के परिणाम बने, अहोभाग मेरा कर्तव्य है, परिग्रह मेरा कम हो जाएगा, इसलिए मैं लेने वाले ने ले लिया, अगर कह देता कि नहीं लेते तो का कर लेते आप। विनोबा ने लिखा कि किसी को भूख लगती है सो हमारा दान सार्थक हो जाता है, वरना तो कोई मतलब नहीं, धरे रहो अपनों। लेने वाला ज्यादा कीमती है कि उसने स्वीकार कर लिया आपका, अपन सोचते कि देने वाला कीमती है, अरे देने वाला तो तब सार्थक है उसका देना जबकि लेने वाला ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, वरना तो आप देखे देखिए किसी को और कह दे कि हमें नहीं चाहिए तो धरे रहो अपनों, काबो तुम्हारे दान को। लेकिन आ जाता अपने भीतर यही भाव कि देने वाला श्रेष्ठ है, देने वाला तो अब श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसने लोभ का त्याग किया, लेकिन लोभ के त्याग करने में निमित्त तो लेने वाला बना। ऐसा विनय भाव अपने भीतर रहे। दो छोटी छोटी सी दोनों के लिए घटनाएं हैं जिससे जल्दी समझ में आ जाएगी कि अपने दान को अपन को कैसे संभालना चाहिए, कैसे उसे राजसिक और तामसिक ना बना करके सात्विक बनाना चाहिए। एक व्यक्ति मरण करके और पहुंचे स्वर्ग में, अब कहानी में तो ऐसा ही लिखा कि वहां पर उनका जो रजिस्टर वगैरह रखा था वो पलटा गया कि भैया कहां जाने इनको, ऐसा होता नहीं हालांकि, मगर उसमें लिखा था तो वो जो चित्रगुप्त थे वहां पर उनने कही देखो आपके पुण्य भी बराबर पाप भी बराबर, आप जहां चाहो नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ, चाहो जहां जाओ वहां जाओ। अरे वो तो चौंक गए कि मैंने तो इतने सारे पुण्य किए हैं, जो कि पाप से भी ज्यादा हो जाएंगे, तो मुझे तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए। कह ले नहीं भाई, आपका तो रजिस्टर में, कह ले देखो आपने कालम भूल गया, हुई लिखवो, हमने तो काम करवाओ। देखा उनने, कह ले तुम देखो उसमें एक कालम, हमने 10,001 रुपया होते फलानी जगह दान दी थी। कह ले हाँ लिखी है 10,001, मनो के सामने लिखी थी कि तुमने ताली बजवा ली थी 10,001 जब दी थी, तो फिर सब खुल गए, ये तो खत्म हो गए। उते तुमने 51,000 रुपया दान दे से उसे तुम पटिया लग गए होते, देवते ही चले गए 51,000 पटिया में ही। जो बोला वो हसंग हमारे बोर को जड़ो सूख, उसका फल तो वही मिल गया, अब उसका फल और क्या मिलेगा आपके लिए। ऐसा उस घटना में पढ़ने में हंसी तो आती है, लेकिन वास्तव में हम जो दान देते हैं कैसी अपनी भावना रहती है, उसका तुरंत फल मुझे मिले, वाहवाही हो, तालियां बजे, मेरा नाम हो, लोग कई दिन तक याद रखें कि क्या दान दिया था, ऐसे अहंकार से ग्रस्त हो करके। और या फिर अगर किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने वाहवाही नहीं की, तो फिर अपन को अपना दिया हुआ बेकार जान पड़ता है। कह रही काय खुंदा और दूसरी जगह देते, जहां माला पहराती वीडियो बन, तो इतने तो कछु नहीं भाव, नाम तक नहीं बोलन दो महाराज ने, हमने तो पैसा दाओ और बताओ, वो फोटो नहीं छापो मैं अपनो पत्रिका में लियो। अब जी हो गया संकलेश, दान भी दिया और संकलेश भी किया, तो दान व्यर्थ हो गया। लेकिन अपन इतना ध्यान नहीं रखते हैं, और अपने दान को जो कि सात्विक हो सकता था उसको राजसिक और तामसिक बना देते हैं। त्याग भी किया काहे के लिए, तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी लिखते हैं कि पर प्रीति करना त्यागा ध्यानम, दूसरे के प्रति प्रेम भाव अपना बने और सामने वाले का भी प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए त्याग करना ही दान कहलाता, संकलेश और अहंकार करने के लिए नहीं का। सात्विक दान तो श्री सेन राजा ने दिया था, जो परंपरा से आहार दान के माध्यम से तीर्थंकर शांतिनाथ बने थे, वो सात्विक दान कहलाएगा। वृषभ सेना ने औषधि दान दिया था, पहले तो मुनि महाराज से द्वेषवश देवालय में विराजे उनके ऊपर कचरा डाल दिया था, लेकिन फिर मन में भाव आया कि अरे मैंने ये काम ठीक नहीं किया, सो कचरा हटा करके उनका उपचार किया, उनकी सेवा करी, उस सेवा के परिणाम से दूसरे जन्म में उनको इस प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त हुई कि उनके स्नान के जल से लोग निरोग होने लगे। ऐसा वृषभ सेना का नाम औषधि दान में, जो सात्विक दान है उसमें आता है। कौंडेश मुनि महाराज जी अपने पूर्व जीवन में गोविंद नाम के ग्वाला थे, उनको एक पेड़ में शास्त्र जी रखे हुए दिख गए थे, सो उनकी पूजा करते रहे, और एक दिन मुनि महाराज जी को देख करके उनके मन में भाव आए कि ये शास्त्र तो जिसकी मैं पूजा करता हूं महाराज, इसको बांच करके और कुछ बात बताएंगे, सो उनको वो शास्त्र भेंट कर दिया। उस शास्त्र भेंट के सात्विक भाव से वो नगर प्रमुख के पुत्र हुए और जाति स्मरण हो गया, उस जाति स्मरण से उन्हें वैराग्य उत्पन्न होकर के स्वयं मुनि बने और महाज्ञानी हुए। शास्त्र दान का फल जो सात्विक शास्त्र दान, अपन ने तो बहुत शास्त्र दे हुई है, लेकिन देखें अपने परिणाम कि हमारे परिणाम अहंकार से और संकलेश से भरे तो नहीं है। और सूकर का नाम आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकाचार में उल्लेख किया, अभय दान में बड़ी बड़ी धर्मशाला बनवाने वालों को नाम नहीं लिखो, लिख देते। सूकर ने अभय दान दिया, पहले के जीवन में भी अभय दान देने में उनके प्राण चले गए लड़ते लड़ते, और सूकर की पर्याय और सिंह की पर्याय को प्राप्त हुए वो दोनों जीव, और सिंह की पर्याय में जब वो अपने शिकार के लिए सिंह गया था, सो उस खाली गुफा में मुनि महाराज जी आकर के ध्यान में लीन हो गए। सूकर ने सोचा कि सिंह आकर के मुनि महाराज पे आक्रमण ना कर दे, मैं तो गुफा के दरवाजे पर रक्षा करूंगा मुनि महाराज की, उनको मैंने यहां पर ये आवास दिया है। ऐसा विचार करके वो सिंह से लड़ा और लड़ते लड़ते सिंह का भी प्राणांत हुआ और सूकर का भी प्राणांत हुआ, लेकिन सूकर मर करके देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अभय दान में उसका नाम आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्मरण किया। भाई ऐसे चार उदाहरण अपने लिए जीवन में अपने दान को सात्विक बनाने की शिक्षा देते। सात्विक दान का वर्तमान में भी एक उदाहरण है कि एक सेठ जी ने पूरा मंदिर बनवाया और मंदिर का बाद में अब बनन लगो चंदा से, पहले तो एक व्यक्ति बनवा देता था पूरा, कोई अहंकार नहीं। उन्होंने सोचा कि अब मंदिर पूरा बन गया है, अब सब समाज को बुला के गांव भर को और अपन मीठा इत्यादि कुछ खिलाओ, सो सबको निमंत्रण दिया, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ करके सारा गांव उनके यहां जीवने के लिए आया। वो एक व्यक्ति नहीं आया, सो सेठ जी ने उसके यहां पर जो भी मिठाई थी वो अपने नौकर से भेजी, सो उस व्यक्ति ने लेने से इनकार कर दिया कि भाई मेरा तो सेठ जी से कोई व्यवहार है ही नहीं, लेन देन है ही नहीं, हम काहे को सेठ जी को ले लिए, फिर हमें हमसे तो सेठ जी ने कभी लिया ही नहीं, इतने बड़े आदमी है वे, हम क्या देंगे उनको, हम तो गरीब आदमी है। सो सेठ जी को जब ये बात मालूम पड़ी कि मेरा तो तब लेंगे जबकि मैं कुछ उनका स्वीकार करूं तब, सो सेठ जी भी बड़े विनम्रता से अपने रथ में बैठ करके उसके घर के पहले ही उतर करके पैदल धूप में उसके घर तक पहुंचे, और कभी चले नहीं थे पैदल और वो भी धूप में, सो हांफ गए और जाते ही साथ उसकी दुकान के बाहर बिछे हुए पत्थर पर बैठ गए और कहा कि भाई गर्मी बहुत है, थोड़ा सा पानी तो पिलाओ। सो जैसे ही उस व्यक्ति ने उनको पानी पिलाया, सो अपने नौकर से कहा कि दे दो भाई मिठाई इनके घर में। सो फिर उसने सेठ जी की तरफ देखा कि मिठाई कैसे स्वीकार कर लूं, सेठ जी ने कहा कि भैया आप तो ले लो हमारी मिठाई, हमने तुम्हारा पानी पी लो। हैं कैसा विनय का भाव, ये है सात्विक दान। अपन तो अहंकार पूर्वक कितना कितना बड़ा बड़ा दान करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन जरा सा दान किया बड़ी विनय पूर्वक किया अपन अपने दान को। ऐसा ही थोड़ा सा दान, निराला का भी उदाहरण आता जीवन में, साहित्यकार थे, उनको एक बार साहित्यिक लोगों को बहुत चिट्ठियां आई, उनको जवाब देने के लिए टिकट के पैसे तक नहीं थे, सो सबरे जवाब देने के लिए वो पत्र उनके टेबल पर इकट्ठे होते चले गए, अब टिकट लगे तो बेजावे। सो उनके मित्र को मालूम पड़ा कि इनके पास टिकट के लिए भी पैसे नहीं है, कैसे पत्र व्यवहार करें। सो चुपचाप आकर के मित्र ने 5 रुपए निराला की जेब में रख दिए। सो उन 5 रुपयों से टिकट खरीद करके और सब पत्र व्यवहार कर दिया। दिन बदले, साता का उदय आया, सो अच्छी स्थिति हो गई। जब अच्छी स्थिति हो गई तो उनके मित्र जिन्होंने 5 रुपए की मदद की थी जब जब मिलते, सो धीरे से 5 रुपए का नोट निकाल कर